दसवां चैप्टर इस्लामी इतिहास दर्शन तथा अरबी इतिहास लेखन। इस्लामी जगत में धर्म का प्रकाशन कुरान तथा हदीत के द्वारा हुआ है। दोनों में इतिहास के प्रसंग में प्रायः इब्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है शिक्षाप्रद दृष्टांत। अतीत कालिक घटनाओं के स्वरूप के समय अवबोध से या घटनाओं और दृष्टांतों की स्मृति के माध्यम से ईश्वरीय निर्णय को समझा जा सकता है। इसीलिए किसी मुसलमान के लिए इतिहास का बोध तथा उसके इब्र को जानना एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। जो ईश्वर का संदेश समझते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे इतिहास जगत में उन्हें प्रकाशित करें। मुस्लिम जगत में समाज तथा इतिहास का एक विशेष स्थान है। यह पहले से ही अस्तित्व में है। इस कारण मुस्लिम का अर्थ है इस समाज का सदस्य होना। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रयोजन की पूर्ति का प्रयास करना ही इस्लाम धर्मावलंबी का प्रमुख लक्ष्य है। इसकी सिद्धि इस्लाम जगत में किस प्रकार हुई, यही इस अध्याय में अरबी लेखकों के कृतियों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस्लाम का 13 शताब्दियों पुराना इतिहास है। इस्लाम 4 अथवा 5 विश्व धर्मों में एक है तथा विश्व के विभिन्न देशों में इसका विस्तार है। इस्लाम एक धर्म पात्र नहीं है, यह एक विशिष्ट धर्म है जिसकी यद्यपि परिभाषा संभव नहीं है, तथापि इसके लक्षण बताए जा सकते हैं। एक मुसलमान के लिए इस्लाम अल्लाह अथवा ईश्वर का धर्म है, अर्थात इसका प्रारंभ 7वीं शताब्दी में नहीं हुआ, अपितु यदि इसके पूर्व नहीं तो सृष्टि रचना के दिन ही हुआ। ईश्वर ने सृष्टि की रचना और साथ ही इसका भी विधान किया कि प्रकृति की शक्तियाँ उसके द्वारा पूर्व निर्धारित परियोजना का अपरिहार्य रूपेण पालन करे। प्राकृतिक जगत को अनिवार्यतः उसके द्वारा निर्मित शाश्वत नियमों का पालन करना है और साथ ही साथ ऐसा करते हुए विवेकी एवं बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए उसकी परियोजना की उसकी शक्ति तथा गरिमा को दर्शनीय तथा प्रत्यक्ष बनाना है। प्राकृतिक जगत के समान ही ईश्वर ने मनुष्य के लिए भी एक परियोजना का निर्धारण किया है। अनादि काल से ही ईश्वर ने इसका निर्धारण कर रखा है कि मनुष्य को सर्वथा व्यक्तिपरक रूप में अथवा एक समूह के किस रूप में व्यवहार करना है। मानवीय आचरण को एक उपयुक्त तथा विशिष्ट प्रकार मानवीय आचार का एक उपयुक्त तथा विशिष्ट प्रकार है, चाहे यह ईश्वर के प्रति उद्दिष्ट मानवीय व्यवहार हो अथवा अन्य मनुष्यों के प्रति। जीवन यात्रा का एक सही मार्ग है। मनुष्य भी ईश्वर की सृष्टि के विविध तथा विभिन्न विषयों में एक है, किंतु वह शेष सृष्टि से इस अर्थ में भिन्न एवं विशिष्ट है कि चैतन्य तथा स्वतंत्र प्राणी है। केवल उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वह ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों का पालन अथवा उल्लंघन करे। अच्छाई शाश्वत काल से विद्यमान है, किंतु वह इसका आचरण करने को बाध्य नहीं है। मनुष्य की यह स्वतंत्रता उसके ऊपर गंभीर उत्तरदायित्व आरोपित करती है। यह उत्तरदायित्व मनुष्य ने स्वयं ही अपने ऊपर लिया है। कुरान में एक स्थान पर 33.72 इसे प्रतीकात्मक ढंग से समझा गया है। जब ईश्वर ने स्वर्ग को कोष्टक आध्यात्मिक शक्तियाँ तथा पृथ्वी एवं पर्वतों को कोष्टक प्राकृतिक जगत स्वतंत्रता का विकल्प दिया तो उन्होंने मना कर दिया। मनुष्य ने इसे स्वीकार किया और इस प्रकार उसने जीवन यात्रा को स्वयं ही व्यवस्थित करने की चुनौती स्वीकार की। आकाश के तारागण जिस प्रकार एक पूर्व नियोजित व्यवस्था में परिभ्रमण करते हैं रहते हैं और उस प्रकार न्याय संयुक्त व्यवस्था उसे पूर्व प्राप्त नहीं है, किंतु वह उस इसके लिए प्रयास करेगा। वह अपने समाज को विघटन तथा दुरावस्था से बचाने के लिए मनुष्य को ठीक प्रकार से रहना आवश्यक है, किंतु वह अशुभ मार्ग को अपनाने के लिए समान रूपेण स्वतंत्र है। मनुष्य सृष्टि का विशिष्टतम निर्माण है, सृष्टि की उत्कृष्ट रचना है। ईश्वर ने उसके लिए एक मार्ग निर्धारित कर रखा है जो उसके अनुरूप आचरण करते हैं वे अत्यंत कल्याण की प्राप्ति करेंगे, जबकि इसके विपरीत आचरण करने वालों को दारुण दंड का भागी होना होगा। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, इसके लिए ईश्वर ने उसे मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। सृष्टि रचना करते ही ईश्वर ने उसे नैतिक नियम की शिक्षा भी प्रदान की। इस्लाम की शब्दावली में आदम प्रथम पैगंबर या अथवा दूत था, जिसने ईश्वर द्वारा निर्धारित नैतिक नियम का संप्रेषण मानव जाति के प्रति किया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए तथा किससे बचना चाहिए। किंतु धीरे धीरे मानव जाति उन शिक्षाओं को भूल गई और आदम का प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ। ईश्वर ने पुनः दूसरा दूत भेजा, किंतु भूल की वही कथा पुनरावृत्ति हुई। इस रूप में कई दूत समय समय पर आते रहे। इस प्रकार के कितने दूत आए यह निश्चित रूपेण ज्ञात नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक समाज के अपने ईश्वर दूत होते रहे हैं, किंतु सदैव संदेश सदैव ही समान रहा है। आदम के अतिरिक्त जिन अन्य पैगंबरों के नाम सुरक्षित रहे हैं वे हैं अब्राहम, मोजेज तथा जीसस। यद्यपि ये पूर्णतया सफल नहीं हुए, किंतु अन्यों की अपेक्षा ये अधिक प्रभावी सिद्ध हुए एवं उनकी शिक्षाओं का अपेक्षाकृत दूरगामी प्रभाव पड़ा। अब्राहम की उपलब्धि एक देववाद की स्थापना थी जो फिर कभी भी विलुप्त नहीं हुई। अब्राहम के प्रयासों से मिथ्या देवताओं तथा मानव निर्मित प्रतिमाओं का निराश मानव इतिहास में प्रथम चरण था, किंतु अभी अन्य कई कार्य शेष थे। मोजेज ने इसे व्यवहार में लाने का उपक्रम किया। उसके ईश्वर की एकता तथा उसके नियमों की एकात्मकता पर बल दिया। उसके अनुयायियों में इस बात का भी ज्ञान हुआ कि ईश्वर की एक नियम संहिता है जिससे सभी मनुष्य बंधे हुए हैं, किंतु उन्होंने उसके लिखित नियम को दोषपूर्ण हो जाने दिया। किंतु उनका सर्वाधिक गंभीर दोष इस विश्वास में नहीं था कि दैवी आदेश सार्वभौमिक स्वरूपी न होकर केवल उनके लिए ही था। इस भूल के शोधन के लिए एक दूसरा दूत आया, यह दूत जीसस था। किंतु उसके अनुयायियों ने एक मूलभूत तथा अक्षम गलती की। उन्होंने संदेश के अनुरूप आचरण करने के स्थान पर संदेश वाहक की ही पूजा प्रारंभ कर दी। मुस्लिम विचार के अनुसार जीसस भी अपने पूर्ववर्ती पैगंबरों के समान ईश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्ति थे। अपने चमत्कार प्रदर्शनों तथा असाधारण नैतिक चरित्र के बावजूद वह भी एक मनुष्य पात्र थे। जीसस के अपने विरोध के बावजूद उसके अनुयायियों ने उन्हें पूजना प्रारंभ कर दिया और यहाँ तक कि उनकी माता का ईश्वर के साथ अश्लील एवं कुविचारी संबंध स्थापन प्रदर्शित करने का प्रयास किया। इस प्रकार एक बार फिर धर्म में दुर्व्यवस्था एवं दोष का अनुप्रवेश हुआ। इस बिंदु तक मानव इतिहास निराशा का इतिहास था, जिसमें मानव जाति द्वारा बार बार ईश्वरीय संदेश की उपेक्षा होती रही। लेकिन दयालु ईश्वर ने एक बार फिर और अंतिम बार मानव जाति के उद्धार के लिए मोहम्मद को पैगंबर के रूप में चुना, जो न केवल संदेश वाहक होगा यह अपितु वह इसकी व्याख्या भी करेगा, इसके रूप आचरण करेगा और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्यों के एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो निष्ठापूर्वक इस संदेश को सुरक्षित रखते हुए विश्व के कोने कोने में फैलने का उपक्रम करेगा। इस बार किसी भूल, किसी दुर्व्यवस्था अथवा अपेक्षा के लिए स्थान नहीं था। इससे पहले भी पैगंबरों ने ईश्वर के संदेश का संप्रेषण किया था, किंतु अब इस घटना के साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का संपादन हुआ। यह कार्य था एक श्रद्धालु समाज की स्थापना जो उसके आदेश के अनुरूप जीवन यापन करेगा। इस समाज के द्वारा सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से खुले हैं। इस समाज के द्वार सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से खुले हैं। ईश्वर अपने अनुयायियों के प्रति प्रतिश्रुत है कि वह उनके साथ हैं एवं समय समय पर उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। इस प्रकार इस्लाम जो शाश्वत काल से विद्यमान रहा है, सातवीं शताब्दी ईस्वी इतिहास में प्रविष्ट हुआ और मानव समाज में अपने वास्तविक एवं अंतिम कार्य संपादन में प्रवृत्त हुआ। इसका संदेश केवल कुरान में ही सुरक्षित है। इस्लामी संवत का प्रथम वर्ष हिजरी एक अर्थात 622 ईस्वी मोहम्मद के जन्म का अथवा उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति का वर्ष नहीं है, अपितु वह वर्ष है जब मुस्लिम समाज को राजनैतिक प्रभुत्व प्राप्त हुआ। मोहम्मद तथा उनके थोड़े से अनुयायियों ने मक्का से मदीना जाकर एक स्वायत्त समाज की स्थापना की और यहीं से इस्लाम के इतिहास का प्रारंभ होता है। इस्लाम में समाज का स्थान। मुसलमान के लिए समाज तथा इतिहास का एक विशेष स्थान है। यह पहले से ही अस्तित्व में है और इस कारण मुस्लिम का अर्थ है इस समाज का सदस्य होना तथा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रयोजन की पूर्ति का प्रयास करना। यह उपक्रम ईश्वरीय ज्ञान के अवरोध से कम महत्वपूर्ण नहीं। इस रूप में मनुष्य ईश्वर के निकट आता है और मानव नियति के पूर्णत्व के लिए शुभ कर्म में प्रवृत्त होना अपेक्षित है। शुभ कर्म कुरान में बताई गई जीवन यापन की विधा है और जिसके भी व्यक्ति मुस्लिम समाज है। पृथ्वी पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ईश्वरीय समाज की स्थापना के ऐतिहासिक प्रयास में सहभागिता द्वारा मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंचता है। इस्लाम के अनुसार ईश्वर तथा मनुष्यों को जोड़ने वाली कड़ी मनुष्य का शुभ कर्म है। नैतिक व्यवहार में ही ईश्वरीय तथा मानवीय सत्ताओं का मिलन होता है। ईश्वर के शाश्वत शब्द का स्वरूप आदेशात्मक है। मोहम्मद के पूर्व इस्लाम एक अगोचर प्रतिमान के रूप में स्थित था। ईश्वर ने अपने शब्द को स्वयं तक ही सीमित रखा था, किंतु अब यह शब्द इतिहास का एक अंग हो गया तथा सर्वदा मनुष्यों के साथ विद्यमान है। इस्लाम में समाज की सर्वोपरिता मानी गई है। मुस्लिम समुदाय केवल एक सामाजिक वर्ग नहीं है, यह एक धार्मिक संस्था है, धार्मिक संघ तथा राज्य अभिन्न है। इस्लाम के अनुसार परम लक्ष्य साद अथवा परलोक में परम सुख की प्राप्ति है। यह सुख ईश्वर की एकांतिक सेवा इबाद से प्राप्त जिसका अर्थ है ईश्वर की आज्ञा के पूर्ण पालन का भाव। यह आज्ञा पालन ईश्वर के प्रयोजन तथा कार्य के ज्ञान इल्म द्वारा ही संभव है। पुराण में स्पष्ट रूपेण कहा गया है कि उसके सेवकों में केवल ज्ञानवान ही अल्लाह से डरते हैं। साथ ही विशुद्ध सेवा इबाद की क्रियान्वित श्रद्धालुओं को संगठित समाज के बिना नहीं हो सकता। और इस प्रकार के समाज का अस्तित्व सुचारू राज प्रशासन पर निर्भर है। इस प्रकार प्रशासन का प्रमुख प्रयोजन विशुद्ध तथा पूर्ण सेवा संभव बनाना है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम में राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में उपकल्पित किया गया है। राज्य का कर्तव्य मुस्लिम जगत को मुस्लिमेतर जगत से पारस्परिक कलह तथा मिथ्या ज्ञान से सुरक्षा एवं शरीयत के आधार पर सुचारू जीवन विधा का प्रतिष्ठापन है। यह जीवन विधा कुरान में दी गई है और राज्य इसमें लेस मात्र भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं कर सकता। ईश्वरीय नियम का संप्रेषण धर्मशास्त्रियों के हाथ में है, जो समय समय पर इसको व्याख्यित तथा व्यवस्थित करते हुए इसे विकसित करते हैं। इस प्रकार ईश्वर के संरक्षत्व में एक संगठित समाज के रूप में इस्लाम का अस्तित्व एक धर्मनिष्ठ एवं विद्वान उलमा वर्ग पर निर्भर है। समाज का आधार व्यक्तिक श्रद्धा है। मुस्लिम की व्यक्तिक श्रद्धा की एक व्यवहारिक स्वरूप में अभिव्यक्ति सामाजिक व्यवस्था तथा इसके कार्यों में होती है। मुस्लिम की धार्मिक निष्ठा अनिवार्य रूपेण मुस्लिम समुदाय में सहभागिता उपलक्षित करती है। इस्लाम की श्रद्धा का स्वरूप सामाजिक व्यवहारिक तथा जीवंतता पूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह इतिहास प्रक्रिया में श्रद्धा का होना है। यह सत्य है कि मुक्ति कार्यों से नहीं अपितु श्रद्धा से ही संभव है, किंतु यह कार्यों की उपयुक्तता में श्रद्धा है। इस कारण इस्लाम में सत्य के प्रश्न पर कभी विवाद नहीं रहा है। विवाद केवल इस पर रहा है कि शुभ कर्म क्या है। इस्लाम के अंतर्गत विविध संप्रदायों का उद्भव धार्मिक प्रश्नों के परिणाम स्वरूप न होकर इसके व्यवहार पक्ष के प्रश्न को लेकर हुआ है। इस्लाम में इतिहास का महत्व। इस्लाम में इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है तथा यहाँ जो कुछ भी घटित होता है उसका दुर्गामी महत्व होता है एवं उसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता, किंतु मनुष्य की सारी उपलब्धियाँ इसी एक व्यक्ति की नहीं अपितु समस्त समाज की उपलब्धि है, किंतु इसके साथ ही ये उपलब्धियाँ विशिष्ट घटनाएँ भी हैं जिनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कयामत के दिन ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होना है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य का जहां एक ओर स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इसका संपूर्ण इतिहास विकास प्रक्रिया के संदर्भ में भी मूल्यांकन होता है। इस्लाम का स्वर्ग एवं नरक में विश्वास है। इस प्रकार इतिहास की समाप्ति के पश्चात एक अन्य विश्व है। अपने कार्यों को करते हुए समय जिसका ध्यान सभी मनुष्यों को रखना है। अंतिम दृष्टि से विचार करने पर यह परलौकिक जगत वर्तमान जगत से अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इस्लाम में इन दोनों जगतों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान इतिहास प्रक्रिया में सहभागिता रखते हुए ही मनुष्य परलौकिक जगत में कल्याण की आशा कर सकता है। इतिहास प्रक्रिया तथा तज्जनित सामाजिक संरचना मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के स्वरूप के लिए परम महत्वपूर्ण है और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत जीवन पर ही सारा ध्यान केंद्रित करके समाज की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। शुद्ध तथा वांछनीय सामाजिक संरचना इतिहास प्रक्रिया में ही अंतर्भूत है और इसका मूर्तिकरण प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। जो ईश्वर का संदेश समझते हैं उनका कर्तव्य है कि वे इतिहास जगत में उन्हें प्रकाशित करें। कुरान तथा हदीथ पैगंबर मुहम्मद के जीवन की परंपरा दोनों में इतिहास के प्रसंग में प्रायः इब्र शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है शिक्षाप्रद दृष्टांत। अतीतकालिक घटनाओं से स्वरूप के समय अवबोध से मानव जाति वस्तुओं के ऊपरी आवरण के नीचे छिपी अदृष्ट ईश्वरीय परियोजना को समझ सकता है। प्रत्यक्षतः निरर्थक प्रतीत होने वाली घटनाओं की श्रृंखला में ईश्वरीय परियोजना का संचालन हो रहा है और इसके सम्यक अवबोध से हम अपने व्यवहारिक कार्य व्यापारों को सुचारू ढंग से संपादित कर सकते हैं। इतिहास का इस प्रकार एक व्यवहारिक लाभ भी है। इस्लाम में इतिहास का स्वरूप सार्वभौमिक है जो सृष्टि रचना के दिन से प्रारंभ होता है। इस्लाम का पार्थिव प्रकाशन इसकी एक अवस्था है जिसकी चरम परिणति भविष्य में निर्णय के दिन संपन्न होने वाली है। इस प्रकार किसी मुसलमान के लिए इतिहास का बोध तथा इसके वास्तविक इब्र को जानना एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञा पालन का भाव रखते हुए स्वयं को निर्णय के दिन के लिए तैयार करता है। कुरान तथा हदीथ में इतिहास के प्रति इस सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण के कारण ही इस्लाम की प्रारंभिक पीढ़ियों में अतीतकालिक अध्ययन के प्रति इतनी अधिक रुचि एवं अनुराग दिखाई पड़ता है। वैसे समान रूप से इन इतिहासकारों का प्रमुख उद्देश्य कुरान तथा हदीथ के आधार पर इतिहास के औचित्य को प्रतिष्ठापित करना है।